ओम शांति। खजानों से भरपूर हैं या नहीं, नहीं उत्तर आ रहा, इसका मतलब नहीं है। एक राजा का बच्चा राजकुमार क्या ये कहेगा कि जो खजाने राज्य के हैं वो मेरे हैं, या कहेगा मेरे नहीं हैं? ये एक सूक्ष्म राज यदि हम समझ लें और मान लें, जो भगवान के खजाने वो मेरे खजाने। क्यों? बाप है। बाबा की इस मुरली में ये लाइन आ गई, बाप के खजानों को जिन्होंने अपने खजाने बना लिया वे सदा भरपूर रहते हैं। खजाने बहुत हैं, बाबा ने दो तीन गिनाए थे। समय का बोलो, बहुत खजाने हैं, और बाबा ने समय के खजाने को सबसे बड़ा कहा। कभी ज्ञान खजाने को सबसे बड़ा कहते, हर खजाना बड़ा है, खजाने तो खजाने ही होते हैं। पहले हम ध्यान दें समय पर। हम इस क्लास को ऐसा करना चाहते हैं जो आपके काम आए, ऐसा नहीं जो ज्ञान की दृष्टि से बहुत बड़ी बड़ी बातें हों, वो नहीं। समय बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हम पूछें अपने से, क्या हम समय के महत्व को उतना ही जानते हैं जितना है आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं? आज परीक्षा का दिन है, पेपर हो रहा है। अगर वो कहें आधा घंटा लेट जाऊंगा मम्मी, आज तो नींद आ रही है, बोलो क्या रिएक्शन होगा आपका? बोलो, कहेंगे अच्छा सो जाओ थोड़ा, एक घंटा बाद चल जाना, क्या है, पेपर पूरा हो जाए तब चले जाना, कहेंगे? समय का महत्व होता है ना। ट्रेन राइट टाइम आ रही हो, 12 बजे आने वाली, कोई कहेगा ट्रेन तो सदा ही लेट होती है, 15 मिनट लेट चलेंगे? जिस दिन लेट जाएंगे उस दिन वो पहले आके चली गई होगी। समय का महत्व है ना। समय का महत्व उन सब से पूछो जो धावक हैं, दौड़ते हैं ना, दौड़ने वाले, एथलेटिक्स। बैठिए एक बहनिया, सेकंड के 10वें हिस्से पर नंबर बनते हैं, एक को गोल्ड मेडल, दूसरे को सिल्वर, तीसरे को कांस्य पदक, बनते हैं या नहीं? सेकंड की भी नहीं, सेकंड के भी हिस्सों पर। उनसे पूछो समय का महत्व। क्या हम संगम युग के समय के महत्व को जानते हैं, और जानते हैं तो क्या उसको फॉलो कर रहे हैं? आपका बच्चा विद्यार्थी जानता है 10 बजे पेपर है तो 9:45 पहुंचना है मुझे मां, लेकिन क्या वो पहुंचता है? जानता तो है कि 9:45 पहुंच जाना चाहिए, परंतु पहुंचता 10:15 है, तो इसको जानना तो नहीं कहेंगे ना। हम समय के महत्व को सचमुच जानते हैं? भाग्य बट रहा है, किसी भी जन्म में भाग्य कम न पड़े, ऐसा भाग्य बनाने का अवसर हमारे हाथ में आ गया है। चिंतन करें मेरे साथ, भाग्य विधाता भगवान स्वयं हमारे हाथ में है। जो चाहे मेरे से ले लो, रोज कह रहा है। देखो, हर जन्म में श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, हर जन्म में सब कुछ रहे, हाथ ही न फैलाना पड़े। मेहनत न करनी पड़े, दुविधाओं में, विघ्नों में, समस्याओं में जीवन न गुजारना पड़े, संबंधों में प्यार रहे, उसके लिए ये सारे खजाने यहां जरूरी हैं। अब खजानों को सुन लो आप। ज्ञान के खजाने से बनती है श्रेष्ठ बुद्धि, और जिसकी बुद्धि जैसी बन जाएगी पूरा कल्प वैसी ही चलेगी। ये तो जानते हैं ना सब, अविनाशी है मन बुद्धि आत्मा, अविनाशी है। एक चाहिए श्रेष्ठ बुद्धि, दूसरा चाहिए धन, और ज्ञान धन जिनके पास बहुत ज्यादा होगा उनको धन भी सहज मिलता रहेगा। तीसरा चाहिए संबंधों में प्यार, जिन्होंने यहां सबको प्यार बांटा है, संगम युग की बात हम कर रहे हैं, जिन्होंने यहां सबको प्यार बांटा है और प्यार के सागर से संपूर्ण प्यार प्राप्त किया है, जन्म जन्म उन्हें संबंधों में प्यार प्राप्त होगा। देखो ये रहस्य है। शक्तियों का खजाना, जिन्होंने शक्तियां बहुत जमा कर ली, अनेक जन्म उनके सिर पर सत्ता ताज आ जाएगा, शक्ति सत्ता दिलाएगी। राजा कमजोर थोड़ा ही होगा कि शत्रु ने आक्रमण कर लिया तो भाग जाए, पहले ही सुरंग से निकल गए, करेगा ऐसा राजा? राजा ऐसे हुए हैं, चाहे सेना 5,000 ही थी उसकी 25,000 थी, डट गए, 5 के 5 मर गए, लेकिन मरे शक्तिशाली। तो जितनी शक्तियां यहां धारण करेंगे, शक्तियां योग से आएंगी, शक्तियां स्वमान से आएंगी, शक्तियां प्योरिटी से आएगी, उतनी ही बार सत्ता मिलेगी। सत्ता माना ताज, बोलो चाहिए ताज या नहीं? ये ऐसे ही ठीक है, क्यों परेशान होंगे ताज पहन के? सत्ता, और जो शक्तिशाली हो जाएंगे जन्म जन्म निर्भय रहेंगे, बहुत जरूरी होगा। संगम युग पर बाबा से वरदान मिल रहे हैं, सफलता का वरदान ले लो, जन्म जन्म सफलता आगे पीछे घूमेगी। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है, मैं 4 महावाक्य लिखाया करता हूं मास्टर सर शक्तिवान के, 4-5 जो बाबा ने अब तक सुनाए हैं, जिनके आधार पे हमने ये समाधान का रिसर्च का काम कराया था। जो बच्चे मास्टर सर्व शक्तिवान के नशे में रहते हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। जिन्हें भी सफलता चाहिए अभ्यास करें। जो मास्टर सर्व शक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। ये अभी भी आ गया है मुरलियों में। और जो मास्टर सर्व शक्तिवान के नशे में रहते हैं, अभी मुरली में आया है, कल संडे था ना, इससे पीछे की संडे की, जिसकी मैंने बहुत चर्चा की थी, 7 फरवरी की मुरली, उसमें आ गया मास्टर सर्व शक्तिवान के नशे में रहने वाले संकल्प से ही जो चाहे कर सकते हैं और करा सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। माताएं कहती है ना, बच्चे मानते नहीं, ये नहीं करते वो नहीं करते, मास्टर सर्व शक्तिवान से शक्तियों का खजाना बढ़ा दो। तो अनेक खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, और एक एक खजाना हमारे 84 जन्मों से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। सब को याद रखना है, हमने श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा कर लिया, कहां से मिलता है? मुरलियों से, स्वान के अभ्यास से, अपने गहन चिंतन से। हमने महान संकल्प बना दिए। देखो जितने सुंदर संकल्प मन में चलेंगे, महान संकल्प चलेंगे, पावरफुल संकल्प विचारों में रहेंगे, उतना ही हम शक्तिशाली बनते चलेंगे। संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा तो जन्म जन्म हमारे संकल्प महान रहेंगे, हमारे संकल्पों को भी संसार फॉलो करेगा और इस समय हमारे संकल्पों को संसार पालन करता है। ये सबसे गहरी बात है, बाबा ने कह दी थी। तुम पूर्वज हो, साकार में बाबा कहते थे जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे भी करेंगे, ये याद रखो। अव्यक्त में कुछ साल बाद बाबा ने कह दिया जैसा संकल्प मैं करूंगी करूंगा दूसरे भी करेंगे। तो ये गुह्यता हो गई, महान संकल्प हमें महान बना देंगे। जिसके विचार जितने महान वो मनुष्य उतना महान। दुआएं ये भी हमारे खजाने हैं, हमें मिल रही है स्वयं भगवान की दुआएं। कैसे मिलेंगी आप सोच लो, आज्ञाकारी बच्चों को, उसके यज्ञ को सफल करने वालों को और यज्ञ में विघ्न डालने वालों को, बोलो, उनकी ओर वो देखेगा भी नहीं। बद्दुआएं नहीं देते पर उनकी ओर देखेगा ही नहीं। हमें दुआएं मिलती हैं महान आत्माओं की। कहां है वो महान आत्माएं? चुप हो गए अब तो। इस देव देवियां महान आत्माएं वो दूसरों को दुआएं दें तो जीवन सरल हो जाएगा या नहीं? जिन्होंने इस समय परमात्म दुआएं और महान आत्माओं की दुआएं प्राप्त कर ली, द्वापर युग से भी उनके जीवन की यात्रा सहज रहेगी। दुविधाओं कठिनाइयों से भरी हुई नहीं, पवित्रता हमारा और सबसे बड़ा खजाना है। जो आत्माएं बहुत पवित्र हो जाएंगी वो तो संगम युग पर ही पूजनीय बन जाएंगी। उनके वाइब्रेशंस संसार को राहत देंगे, प्रकृति को पावन करेंगे। इसलिए सोच लो और गहरी बात, जो बहुत पवित्र हो गए उनके पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति की खुराक हैं। वे प्रकृति को सतो प्रधान और एनर्जेटिक करेंगी ताकि वो 5000 साल के लिए फिर से संसार की पालना कर सके। और जो ऐसा करेंगे प्रकृति उन्हें जन्म जन्म सुख प्रदान करेगी। सुख, तन भी अच्छा स्वस्थ निरोगी, और प्रकृति से ही सब कुछ मिलता है। जितने भी साधन है संसार में धन सहित, वो सब प्रकृति की देन है। तो हम अपने वर्तमान के खजानों को बढ़ाते चलें, ये सबको खुद सोचना है। हम दूसरों को दुआएं देते हैं या बद्दुआएं? चेक करें स्वयं को, कहीं हम ऐसा तो नहीं कह देते ये तो बदलेगा ही नहीं, पत्थर की लकीर है ये बदलने वाली नहीं है। क्या कह दिया बाबा ने पीछी मुरली में? ये श्राप ना दो किसी को। तो हम दुआएं देते हैं या बद्दुआएं? हम शक्तिशाली हैं या कमजोर? हम ज्ञान के चिंतन में रहते हैं या और चिंतन में? हम धन के पीछे भाग रहे हैं या ज्ञान धन के पीछे? जो ज्ञान धन के पीछे भागेंगे धन उनके पीछे भागेगा, उनको धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहेगी। भाग्य विधाता भगवान, क्या हम उससे सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हैं? हम इन खजानों को बढ़ाते चलें। बाबा ने अपनी मुरली में तीन तीन बातें बहुत सुना दी, याद है ना? पहले तो सबसे बड़ा महावाक्य सुना दिया, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, इससे आगे तो कुछ बचता नहीं है, ये तो संपूर्णता है। फिर हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट, जिन माताओं की समझ में ना आता हो, अंग्रेजी सब तो नहीं जानते, हाईएस्ट माना मैं महान आत्मा सबसे महान, होलीएस्ट माना परम पवित्र, ऋचेष्ट्वाना बहुत धनवान। तीनों टाइटल बाबा ने हमें दे दिए हैं। और कौन कौन सी तीन बातें? एक गुह्य बात जो आप सबको भूल गई होगी, जो खजानों से भरपूर होंगे, नैनों में रूहानियत, चेहरे पर मुस्कुराहट, कर्मों में गुण, कर्मों से गुण दिखाई देंगे। गुणों का पता तो कर्मों में ही चलता है ना। हम कर्म क्षेत्र पर हैं, हम किसे लड़ नहीं रहे हैं, इफेक्ट होगा दूसरों पर। कर्म क्षेत्र में हैं हम, बहुत शांति से, जिम्मेदारी से, समय से पहले काम पूरा कर देते हैं, लोग सीखेंगे। हम सहज भाव से जीवन जी रहे हैं, भागदौड़ नहीं, टेंशन नहीं, परेशान नहीं रहते, दुखी नहीं रहते, लोग हमसे सीखेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, जरा सी जिम्मेदारी हुई और टेंशन में आ गए, इरिटेट हो गए, चिड़चिड़े हो गए, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। और तीन शब्द कौन से बोले? निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ। इसमें कभी बाबा ने निर्मल भी बोला है, निमित्त, निर्माण और निर्मल। लेकिन परसों बोला निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ। तो बाबा तीन तीन शब्द बोल रहे थे। खाता जमा करने की भी तीन विधियां बता दी। पहला, पुरुषार्थ से खाता जमा करो। बैंक खोला है भगवान ने, कौन है चेयरमैन उसका? भाई बताएंगे कौन है चेयरमैन। चुप हो गए सब, वो स्वयं चेयरमैन है ना, बाकी मैनेजर बहुत हैं इधर। आप में से भी कई मैनेजर हैं भगवान के बैंक के, गॉड्स बैंक, स्पिरिचुअल बैंक, जिसमें अलौकिक खजाने जमा होते हैं। तो पहला खजाना होगा पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ ये ज्ञान योग का सारा दिन जो हम करते हैं। दूसरा, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। और तीसरा बाबा ने बताया नहीं, वो बात आगे बढ़ गई, खजानों का दान करना। सेवाओं से भी होगा, सेवाओं से, सेवाएं दान करने का ही है ना खजाने। तो सेवाओं के द्वारा खुशी भी बहुत मिलेगी, दुआएं भी बहुत मिलेंगी, सूक्ष्म बल भी बहुत मिलता है। मैं एक चीज और कह दूं आप सबको, जिसका लोगों को पता नहीं है। बाबा मुरलियों में कहा करते हैं, जो भी गलती करो बाप को साफ साफ सुनाओ, आधा माफ हो जाएगा, कहते हैं ना। कभी ये भी कह देते हैं माफ नहीं होता, जो किया उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो क्या होता है? सुनाना भी जरूर है, मन हल्का हो जाएगा। सुनाने से पहले, सुनाने के पीछे जो इंटेंशन है, इरादा है, वो होना चाहिए हमने डीपली रियलाइज कर लिया ये मेरी गलती है, इसलिए सुना दिया कि बाबा ने कहा सुना दो तो माफ हो जाएगा, चलो छूटे, जान बचेगी, कल फिर कर लेंगे, फिर पहुंच जाएंगे बाबा के रूप में, फिर सुनाएंगे, चलेगा काम। डीप रियलाइजेशन, चलो डीप रियलाइज कर लो। तो यदि हम सच्चे मन से विद रियलाइजेशन महसूस करते हुए बाबा को अपनी गलती, भूल या कोई सूक्ष्म पाप सुनाएंगे तो क्या होगा? माफ नहीं, बाबा रोज सवेरे अपने वाइब्रेशन समय देगा, उसका ध्यान हमारी ओर चला जाएगा। और ध्यान ही नहीं, सूक्ष्म बात, उसका प्यार भी हमारी ओर आ जाएगा। ये तीन फायदे हैं इसलिए बाबा से बिल्कुल स्पष्ट रहना है, उसकी बहुत मदद मिलेगी। वो तो आया ही है हमें संपूर्ण बनाने, वो तो आया ही है हमारे दुख हरने, हमें पावन करने, सारी कमियों को निकाल देने, जरा भी दुख देने वाली चीज अंदर न रहे। हम एक कदम बढ़ाएं, उसकी बहुत मदद मिलेगी। तो हमें सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर करना है। अब मैं आपका इस मुरली से और आज की क्लास से एक ही बात पर ध्यान दिलाऊंगा, ज्यादा तो याद नहीं रहती कभी भी जीवन में। स्वार्थ को छोड़ना है, सूक्ष्म स्थिति है, सूक्ष्म ये धारणा है, निस्वार्थ भाव। मैं छोटे छोटे उदाहरण देता हूं जो बड़े कॉमन हैं और वो मनुष्य के अंदर होते ही हैं। माँ बाप अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह, एक सूक्ष्म संकल्प रहता है हमें कहीं जरूरत पड़ जाए बुढ़ापे में तो बच्चे हमारी सेवा करें, मदद करें, धन भी लगाएं। और मान लो बच्चों ने ऐसा न किया, सब नहीं है, बहुत बच्चे तो करते ही हैं माँ बाप की सेवा, मैं तो देखता हूं बहुत बच्चे, बड़े बड़े छोटे बच्चे नहीं, 50 साल की आयु के अपना काम धंधा छोड़ के भी बाप की सेवा करते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन मान लो न करें, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए जान दे दी थी और वो उन्हें पूछे नहीं, तो क्या होता है आप सब जानते हैं, निस्वार्थ हो जाएं, बच्चों की पालना करना, पढ़ाना, उन्हें बिजनेस कराना, मकान बनाना, मैरिज कराना, ये हमारा कर्तव्य है। हमारी भी तो किसी ने की है ना, ऐसे ही हमने भी की, भूल जाओ। एक व्यक्ति पहले बनाया करते थे धर्मशाला हॉस्पिटल, छोटे छोटे हॉस्पिटल, किस भाव से, सेवा भाव से आजकल बनाते हैं। नाम हो जाए, बड़े भारी सोशल वर्कर हैं ये, 4 हॉस्पिटल बनाए हैं बड़े बड़े, लेकिन लक्ष्य क्या है पीछे, नाम के अलावा काम भी हो जाए। कौन सा काम, कमाई। कोई गरीब पहुंच जाए तो माफ नहीं करते, 2 लाख देना है तो 2 ही देना है। ये स्वार्थ हो गया। मैं आपको एक हॉस्पिटल की बात सुनाऊं, अहमदनगर पूना के पास है कोई उधर के, मैं गया वहां, एक जैन परिवार है, बहुत साहूकार, बहुत माना बहुत, मुझे अपने ले गए उस फार्म में भी, बहुत बड़ी लैंड, बहनों को भी बहुत दिया हुआ और उसमें स्लोगन लगाए हुए, अपने चित्र लगाए हुए, लोग घूमते आते हैं देखते हैं। कहा हमने एक हॉस्पिटल भी बनाया है, ले गए। मैं तो देख के हैरान हुआ, डायलिसिस 100 रुपए में, कैंसर हार्ट की बीमारी फ्री, गरीबों को भोजन भी वहीं दे रहे हैं। मैं देखता ही रह गया उन्हें, डायलिसिस के तो बहुत बहुत सारे पैसे लेते हैं लोग, सबसे कमाई का बड़ा साधन हो गया है 100 रुपए, उसमें भी कोई गरीब है फ्री। देखो ऐसी भी पुण्य आत्माएं कलयुग के भी अंत में हैं, ज्ञान में है वो दोनों, उसकी युगल ज्यादा है, भाई थोड़ा, जैसे भाई लोग काम धंधे में बिजी रहते हैं। मैं देखता रहा कि देखो ऐसी पुण्य आत्माओं के कारण ही तो संसार चल रहा है, अगर सारे पापी हो जाएं तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। स्वार्थ नहीं। एक दूसरा एग्जाम्पल दे, ये सच्चे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ग्वालियर में मैं गया एक अच्छे बड़े डॉक्टर ज्ञान के संपर्क में, पूरे ज्ञानी नहीं, अपने घर ले गए, सेंटर को भी एक मकान दिया था, 9 घर थे उनको, हैं 9 अच्छे बिल्डिंग। तो मैं उनके साथ था, नीचे था, तो आसपास के लोग भी आ गए थे कई, तो डॉक्टर की महिमा करने लगे। डॉक्टर साहब हमसे कुछ नहीं लेते, हम एक्सरे कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, सब है उनका, पैथोलॉजी आदि, रेडियोलॉजी, कुछ नहीं लेते। मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत पुण्य कर रहे हो, क्या बात है, लेते नहीं हो, थोड़ा तो ले लिया करो। उत्तर सुनो, पैसे मैंने बहुत कमा लिए हैं, देखो 9 मकान हैं बड़े बड़े, प्रसिद्ध डॉक्टर रहा, नर्सिंग होम खोले, कितना काम किया, अब मैं दुआएं कमा रहा हूं। ज्ञान ले लिया था ना, मैंने कहा दुआएं क्या करेंगे, मैं जानबूझ के पूछ रहा था उससे, मैं कहा महत्व तो पैसे का है, दुआएं क्या काम करेंगी। उसने बताया कि पैसे वाले लोगों के बच्चे मर जाते हैं, और जिनके पास दुआएं बहुत हैं, सीरियस बीमारी होते भी ठीक हो जाते हैं, ये हमने पूरा जीवन देखा है, इसलिए दुआएं कमा रहा हूं। बड़ी खुशी हुई मुझे, मैं कहा ये तो हमसे बड़ा ज्ञानी है भाई, है ना, देखो भावनाएं, निस्वार्थ भाव जीवन में अपनाना, सेवा करो भूल जाओ, ये नहीं सेवा की बहन जी पूछती नहीं हमें तो, चाय भी नहीं पिलाई, भूखे आए थे, खाने को भी नहीं पूछा, बहने भी तो भूखी आई थी बेचारी, अब बनाएंगी, स्वार्थ भाव नहीं, कोई हमें पूछे इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, हम टीवी पर आ जाएं इसलिए सेवा कर रहे हैं, हमारा नाम हो जाए हमारे अलौकिक परिवार में भी, ये बहुत ज्यादा सेवा करते हैं इसलिए कर रहे हैं। संगम युग को एक वरदान है, ध्यान से सुन लेंगे सभी, जो जिस भावना से चल रहे हैं उनकी वो भावनाएं अवश्य पूरी हो रही हैं। किसी को नाम चाहिए, खूब मिल रहा है, लेकिन आगे का खत्म। किसी को मान की प्यास से खूब मिल रहा है, लेकिन आगे नहीं, ब्लॉक कर दिया है, इसलिए ये नहीं। और सच्ची कहानी सुना देता हूं, एक जगह गया, बहनों ने बहुत अच्छा बड़ा रिट्रीट सेंटर बनाया, हमारी पहचान की है वो बहन, नेटिव प्लेस जहां हमारा है वहीं की है, मधुबन में रही बहुत साल हमारे पास ही। मैंने पूछा बहन जी बहुत पैसा लगा होगा, किस किस ने मदद की है, तो नाश्ते वालों की लाइन लगी हुई थी, धीरे से इशारे से अंगुली से बताया, वो जो है ना भाई देखो वो ऐसी जैकेट पहनी हुई, उसने बहुत मदद की, उंगली नीचे कर ली। मैंने कहा तो मेरे से मिला तो दो, कहा बिल्कुल नहीं, मना किया हुआ, मैं तो तुमको बता दिया, उसने बिल्कुल मना किया हुआ, किसी को बताना नहीं, मानता है ना, किया, कई करोड़ों की मदद की उसने, लेकिन गुप्त, किसी को भी पता ना चले, जिसको बताना है उसको पता है ना, औरों को बताकर क्या करेंगे। दूसरा केस, एक दूसरे छोटा सा रिट्रीट सेंटर, कहा भाई 2-3 भाइयों को बुलाना है, उनके साथ भोजन करना है, मैंने कहा करा लेना। कहा एक बात सुना देती हूं आपको, भाई थोड़े नाराज हो गए हैं। मैंने कहा क्यों, वही उन्होंने ये जमीन हमें दी थी, अभी कोई दादी आई थी ओपनिंग करने, हमने उनका परिचय नहीं कराया दादी को, इतनी गलती रह गई हमसे, बताया नहीं कि इन्होंने ये जमीन दी है, 2 एकड़ थी। कहा वो इतने नाराज हैं, बात मत पूछो, आप उन्हें राजी करके जाना, हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा मैं राजी कर देता हूं, मेरे को आता है राजी करना, हो गए राजी। समझ गए ना, निस्वार्थ भाव किसे कहते हैं, निस्वार्थ करने से भाग्य और बल बहुत प्राप्त होता है, पुण्य भी और वर्तमान में ही बल भी। पुण्य तो हमारे जन्म जन्म साथ चलेंगे, पर वर्तमान में भी हमें बहुत कुछ चाहिए, बल वो हमें प्राप्त हो जाता है साथ साथ। इसलिए स्वार्थ भाव को लौकिक में भी अलौकिक में भी त्याग करके पूरे निष्काम भाव से कर्म करना, सेवा करना, जीवन निर्वाह करना सुखी रहने का सर्वोत्तम तरीका है। आजकल तो गीता कोई पढ़ता नहीं है, पर अगर वो लौकिक गीता भी आप पढ़ो, निष्काम भाव, समर्पण भाव, अहम का त्याग, ये चीजें बार बार इन पर इंसिस्ट किया गया है। अहम का त्याग बहुत ज्यादा, समर्पण भाव, निष्काम भाव। समर्पण भाव सब तो 50 बार आया होगा, निष्काम भाव भी 50 बार, जो सब कुछ करके मेरे अर्पित कर देते हैं, मैं उनका सच्चे मन से किया गया थोड़ा भी अर्पण स्वीकार करता हूं, और जो अहम भाव से अर्पित करते हैं मैं उनका स्वीकार नहीं करता हूं। बहुत ही गहरे महावाक्य हैं। उनका अर्थ तो हमने तब समझा जब हमने बाबा की अव्यक्त मुरलियां सुनी। मैं लौकिक से ही पढ़ता आता था, गीता को समझ में नहीं आता था, अच्छा लगता था, पर इन सब का अर्थ, रियल अर्थ समझ में आया जब अव्यक्त महावाक्य सुने। बहुत बाबा ने बहुत क्लैरिफाई किया इन चीजों को। ज्ञान योग साधनाओं के मार्ग पर ये तीनों चीजें बहुत महत्व की हैं। तीन दिन बाद बाबा बता रहे थे ना, मैं भी तीन ही बता रहा हूं। ज्ञान योग के मार्ग पे चाहे कोई लंबा समय चले, लेकिन अहम भाव रह जाए, अहंकार रह जाए, तो समझो कुछ नहीं पाया है। चित्त निर्मल नहीं बना तो जीवन सुखी नहीं हो पाएगा। समर्पण भाव, सब कुछ तेरा, दो शब्द हैं, ध्यान दे देना, गुह्यता आप खुद चिंतन भी कर लेना और समझ लेना। एक है समर्पण होना, दूसरा है समर्पण भाव से जीवन जीना। अंतर है दोनों में। कई लोग समर्पित हो के भी समर्पित भाव में नहीं रहते, मेरा है, और कई लोग घरों में रहते भी समर्पित भाव में रह रहे हैं। चिंतन करेंगे इस पर बहुत अच्छी तरह, और कर्म ऐसे निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव, निष्काम भाव और निस्वार्थ भाव एक ही है लगभग, निष्काम भाव को अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर समय चल रहा है, बाबा से सब कुछ प्राप्त करने का समय चल रहा है। ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा, या आएगा 5000 साल में, याद ही किया करेंगे। कभी भगवान आए थे, गोप गोपियां मिले थे, भगवान के साथ डांस करते थे, प्यार का समय बिताया था। श्री कृष्ण के रोल में कई रोल दिखाए गए, बचपन प्यार भरा, गोप गोपियों के साथ प्यार में मगन अवस्था, उसके बाद असुर संहार प्रारंभ होता है, और फिर और बहुत सारे रोल दिखाए। वो रोल श्री कृष्ण के नहीं है, वो संगम के हैं, शिव बाबा के रोल हैं वो सब। तो ये सुंदर समय है बाबा से सब कुछ लेने का। मैं आपको चिंतन दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। चिंतन लिख लो जो लिख रहे हैं। क्या संगम युग पर हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? अच्छा चिंतन करेंगे। आप एक लिस्ट बना लो 5 पॉइंट की, केवल स्वयं करना है। क्या मुझे पर चिंतन करना चाहिए या स्वचिंतन, दूसरों को देखना चाहिए या अपने को, उलझना चाहिए या बिल्कुल संतुष्ट रहकर जो प्राप्त है उसमें आनंदित रहना चाहिए। 5 लिख लो कुछ भी जो आपको अपने जीवन को देख के उचित लगे। ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये स्वचिंतन कहलाता है, अपने से बातें करना कहलाता है। इससे बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो इस तरह आप सभी इस भट्टी से अपना एक छोटा सा प्लान बनाकर अवश्य जाना, 3-पॉइंट प्लान, 3 बातों में ये करेंगे, और उसको ऐसी जगह लिख के रख लेना जिसे रोज पढ़ें आप, अपने को उमंग दिलाते रहें, करते रहें, तो बहुत सुखद फीलिंग हो जाएगी। अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। हैं भाई कोई क्वेश्चन लेने वाले?
अंतर्मुखी कैसे बने?
अंतर्मुखी तो बनना है। ये तो ऐसा प्रश्न हो गया, खाना कैसे खाएं, भूख तो लगी है। हाँ, कईयों को होता है कि खाना खाया नहीं जाता। अंतर्मुखी बनने के लिए एक सुंदर लक्ष्य बना लो, रोज का योग इतने घंटे करना है आज, आप ही अंतर्मुखी हो जाएंगे। अंतर्मुखता का अर्थ होता है व्यर्थ बोल, कर्मेंद्रियां जो बाहर की ओर हैं, बाह्य मुखी, कान बाहर की बातें सुन रहे हैं, आंखें बाहर की ओर देख रही हैं, अंदर की ओर करना, आत्मा पर ले आना, असली अंतर्मुखता ये है। तो लक्ष्य बना लेंगे तो होने लगेगा। चलो,
जब रोज नेगेटिव आत्माएं सामने आती है तो उसके सामने कैसे हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाएं?
लक्ष्य रख लो कि हमारा कर्तव्य ही है विश्व कल्याण का, हमारा कर्तव्य ही है सबको देने का। कोई हमें कुछ भी दे, हमें तो पॉजिटिविटी देनी है। इसके लिए 2-4 स्वमान रख लो। मैं इष्ट देवी हूँ, पूर्वज हूँ, मास्टर क्रिएटर हूँ, और भी कई स्वमान हो सकते हैं। और दूसरों को आत्मा देखेंगे। देखिए ये राज आप समझ लें, स्वमान में रहकर दूसरों को आत्मा देखेंगे तो उन्हें वही मिलेगा जिस स्वमान में आप हैं। आप इस संकल्प में हैं, मैं पवित्रता की देवी हूं। ध्यान से सुन ले सभी बहनें, कोई बुरी दृष्टि से आपके सामने आ गया, आपने उसे आत्मा देखा, प्योर वाइब्रेशंस उसे मिलने लगेंगे।
बस अब उसके कनेक्शन में ही है ये क्वेश्चन। आप स्वमान के बारे में बताते हैं, वो स्वमान लिखना और बोलना दोनों का फायदा और दोनों की विधि हम जानना चाहते हैं।
दोनों से ही ऊपर की चीज है, ये दोनों ही छोटी चीजें हैं, लिखना और बोलना। असली चीज है स्वमान को स्वीकार करना, उसकी स्मृति में रहना और फिर उसके नशे में रहना। मैं एक महान आत्मा हूं, स्वीकार करो मैं महान हूं। प्राय हमारा विवेक स्वीकार नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है। मैं महान हूं, अंदर से आवाज आती है, नहीं, देख लो आप अपने को, सब देख लो। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, अंदर से आवाज आएगी, नहीं, हो ही नहीं। स्वीकार करना, स्मृति में रहना, फिर वो नशे में आ जाए, असली विधि ये है। पर क्योंकि बहुतों से ये आता नहीं है, इसलिए हम लिखाते हैं। लिखने से क्या होता है, उसी संकल्प को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वैसी एनर्जी आत्मा से निकलकर ब्रेन को जाती है और बहुत चीजें ठीक हो जाती हैं।
संपूर्ण नष्ट मोह कैसे बने?
बड़ा भारी क्वेश्चन है, कौन बनना चाहता है? थोड़ा कम कम बन जाते हैं। देह से न्यारे जितने होंगे और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे। देह से न्यारापन, क्योंकि सबसे ज्यादा मोह अपनी देह से होता है। कहानी याद आ गई, एक बहुत पुरानी, आपने कभी नहीं सुनी होगी, मनोहर दादी सुनाया करती थी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो बहुत कुछ हुआ था, आग लगा दी गई, मुसलमानों ने आग लगा दी, धरती गर्म हो गई, माँ के 2 बच्चे साथ में, और माँ अब जलने लगे पैर, माँ के बच्चों को कंधों पे उठा लिया, अब माँ के पैर जल रहे हैं। अब माँ ने वो किया जो आप सभी माताएं सुन के क्या करने लगेंगी, सोच लो, दोनों बच्चों को नीचे किया, उनके ऊपर पैर रख के खड़ी हो गई और वो बच गई और वो ज्ञान में आई बाद में, और वो पछताती थी। बाबा ने उसे हल्का किया। कर्मों की गति हम जानते हैं ना, बाबा ने बहुत हल्का किया। तो सबसे ज्यादा मोह किससे है? स्वयं से। जितना देह से डिटैच होंगे, आत्मिक दृष्टि बनाएंगे बच्चों के लिए और सबके लिए, धीरे धीरे मोह निकलेगा। तीसरी चीज, स्मृति स्वरूप होने से ही नष्ट मोह बनते हैं। बाबा ने बहुत स्मृतियां दिलाई हैं, मुरलियां भी हैं इस पे और हमने क्लासेज बहुत कराई हैं, सुन लेना। स्मृति दिलाई, अब ये खेल पूरा हो रहा है, सबको जाना है, मोह छूटने लगेगा। स्मृति दिलाई, तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, मोह छूटने लगेगा। ऐसे अभ्यास करेंगे।
अब 2021 चल रहा है और 2036 को 100 साल होंगे, बाकी समय में इतना विशाल कार्य कैसे पूरा
हो जाएगा? कोरोना में कुछ विशाल काम हुआ या नहीं? जितना ज्ञान लोगों ने लिया, कोर्स किया, उतना हम वैसे न करा पाते, क्यों प्रभा दीदी? हुआ या नहीं? जब जय जयकार होगी, ये देर लग रही है, बाबा की महावाक सुना रहा हूं, ये देर लग रही है राजा रानियों को तैयार करने में, अर्थात 108 रतन तैयार होने में। जिस दिन वो तैयार हो गए, इतनी जय जयकार होगी कि आप तो 15-16 साल की बात कर रहे हैं, एक साल में संसार उमड़ पड़ेगा, आबू महान तीर्थ बन जाएगा, बहुत सारे सेवा केंद्र लाइट हाउस बन जाएंगे, जय जयकार शुरू हो जाएगी। 108 की इंतजार बाबा नहीं करेगा, 8 रतन पहले अपनी परफेक्ट स्टेज में आ जाएं। उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, 108 रत्नों में पहले 25 मन के बहुत महान है, बस वो तैयार होते ही एक साल नहीं लगेगा। दुनिया ऐसे टूटेगी, आपको न सोने देगी न खाने देगी, सोच लो क्या करोगे? है इतना माल तैयार जो सबको दे सको? है? सोच लो भाई, सभी लोग आपको उन काम धंधा नहीं करने देंगे, कहेंगे हम देते हैं पैसा, ये करो, शांति दो सबको, खुशी बांटो, प्रेम बांटो। वो समय अब 2025 से पहले पहले आ जाएगा, तो काम जल्दी हो जाएगा ना। 2036 तो बहुत दूर हो जाएगा, 30 तक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन इस धरा पर आ जाएगा, हिंदी में रूहानी क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, और एंड में आ जाएगी पवित्रता की क्रांति, क्योंकि सब आत्माएं घर जाने से पहले एक बार पवित्रता को स्वीकार भी कर लेंगी और जितना उनका है उतना बन भी जाएंगी, तो इसमें देर नहीं लगेगी।
दो तीन प्रश्न है जो पढ़ाई को, लौकिक पढ़ाई को लेकर के हैं। लौकिक पढ़ाई में हमेशा सफलता पाने के लिए बाबा से मदद लेना क्या स्वार्थ होगा, और इसमें बाबा की मदद कैसे लें?
मैं पहले
पढ़ते पढ़ते समय क्या योग अभ्यास करें जो पढ़ा है वो जल्दी याद आ जाए, और लौकिक पढ़ाई और ज्ञान योग का बैलेंस कैसे बने, संकल्पों में दृढ़ता को लाने के लिए क्या करें, और लॉकडाउन से बच्चों की स्टडी और फ्यूचर डगमगा गया है, तो बच्चों के लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए ताकि उसकी एकाग्रता भी बढ़े।
ठीक है, लिख लो सभी माताएं, डायरी पेन निकाल लो अच्छी तरह। भविष्य की, बच्चों के भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करना। अब चिंता करना किसकी? माताओं, माताएं दाता है ना, तो दूसरों का ज्यादा सोचती हैं। चिंता करना अपनी स्थिति को महान बनाने की, क्योंकि कोरोना काल में ये जो ऑनलाइन पढ़ाई आ रही हो रही है, इसमें आधे बच्चे तो पूरे हो गए, केवल जो बुद्धिमान हैं वही पढ़ सकते हैं, बाकी तो आप इधर से उधर हुए और उन्होंने गेम खेलना चालू किया। ये समय का प्रभाव है, इसको कोई बदल नहीं पाएगा। बच्चों को तो खेलकूद भी चाहिए, अपना फ्रेंड सर्किल भी चाहिए, लड़ना झगड़ना भी चाहिए, चाहिए या नहीं, गिरना पड़ना ये सब भी चाहिए, इसी से उनका डेवलपमेंट है। वो सब रुक गया है, इसलिए भविष्य की चिंता नहीं। एक बात अब ध्यान से लिख लो सभी बच्चे, सवेरे उठकर 3 बार या 5 बार याद करेंगे, मैं बुद्धिमान हूं, मेरी मेमोरी परफेक्ट है, मैं बुद्धिमान हूं, मेरी मेमोरी परफेक्ट है, याद रहे सब कुछ। एक बहुत सुंदर सूक्ष्म प्रयोग है जो मैंने बहुतों से कराया है पर्सनली, बड़े बड़े जो हायर कंपटीशन देते हैं आईएएस वाले, मेडिकल वाले, एमडीए करने के लिए जो एग्जाम देते हैं, सीए सीएस, उनसे कराए, बहुत सफल। एक दो बार अभ्यास कर लें बच्चे, ऐसा नहीं इसको सारा दिन करना है। मैं थोड़ा और डिटेल भी बता देता हूं, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं, मन बुद्धि की मालिक हूं। मन को कहेंगे हे मन, अब मुझे पढ़ना है, तुम शांत हो जाओ। बुद्धि को कहेंगे हे मेरी बुद्धि, बुद्धि है ग्रहण शक्ति, हे मेरी बुद्धि जो मैं पढ़ूं सब ग्रहण कर लेना और एग्जाम के समय इमर्ज कर देना। ये अभ्यास करके फिर पढ़ो, 2-3 बार भी कर सकते हैं दिन में। और अगर अभी स्कूल कॉलेज जाना तो शुरू हो रहा है, खुल रहा है, जो बच्चे बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो हर पीरियड में शुरुआत में आधे मिनट में कर लें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बुद्धि की मालिक हूं, है मेरी बुद्धि जो टीचर अब पढ़ाए उसे ग्रहण कर लेना, काम हो जाएगा। बिल्कुल इतना ही, पूरे कॉलेज या स्कूल के टाइम में 3 बार कर ले, टाइम नहीं लगता, 10 सेकंड 20 सेकंड। इससे बुद्धि रिफाइन होगी, बुद्धि की ग्रहण शक्ति एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी और पढ़ाई एंजॉयमेंट बन जाएगी। बाकी बैलेंस रखने की बात है, थोड़ा थोड़ा योग सवेरे शाम बच्चों को कर लेना चाहिए, उससे मेहनत बच जाएगी। बहुत लेबोरियस होने की जरूरत नहीं, लेबोरियस मैंने पढ़ रहे किताबें, इसकी जरूरत नहीं, जरूरत है बुद्धि के विकास की। और बुद्धि के विकास के लिए जो ये गूगल पे नेट पे जो ये बहुत सारी गंदगी आ रही है, इससे बचने की, जिन विद्यार्थियों को बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, बहुत ज्यादा मार्क्स लेने हैं, जिनको अपना भविष्य सुंदर बनाना है, वो इन चीजों में संयम बरतेंगे। एक बार आदत पड़ गई ना गंदी चीजें देखने की, गए। मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बताते हैं, हमने ये एंड्रॉयड फोन रखा ही नहीं है, छोटा रखा है, हम देखते ही नहीं, क्योंकि एक बार देख लिया था बुद्धि विचलित हुई, तब से फेंक दिया उसको। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो ये काम करेंगे, और माताएं अपने बच्चों को सिखा दें तो बहुत अच्छा होगा, अगर वो सीखने के इच्छुक हों, इससे संतुलन भी अच्छा होगा, बुद्धि एकाग्र रहेगी, भविष्य सुंदर होगा। क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं जिन्होंने गंदगी देख ली है नेट पर, रोते हैं, कहा वो दिमाग से जा नहीं रहा, बुद्धि में वही चित्र हैं, लेक्चरर पढ़ा रहा तो भी वही आ रहा है, हम परेशान हो गए, दुखी हो गए हैं। देखो, देखा होगा 4-5 बार, दुख दे दिया सारे जीवन के लिए, नष्ट कर दी खुशी भी, अब सोचते हैं क्या होगा हमारा। ये स्थिति हो गई कई युवकों की, और बहुत युवक बहुत अच्छे हैं जो इस पे ध्यान नहीं देते, अब पढ़ाई ही मुख्य एम है, उस पे ध्यान देंगे। आजकल मुरली आती है, आप सेंटर में रोज नहीं आ पाते, स्टूडेंट हैं, 15-20 मिनट भी मुरली सुन लो, ऑडियो भी, कभी कभी सेंटर में जाओ, बहनों का भी आपको दुआएं मिलेंगी, अच्छा होगा। ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट लाइफ विल बिकम द बेस्ट लाइफ और सक्सेस विल कम टू द फीट, ये सबको याद रखना। ठीक है, सब आ गया बहन जी?
युवा वर्ग के भ्रमणों की कैसे पवित्रता को बढ़ाना चाहिए?
देखिए, पवित्रता के लिए मैं पवित्रता की देवी हूँ, फरिश्ता हूँ, और योग अभ्यास बढ़ाएंगे बहुत अच्छा। अगर आपको अपनी प्योरिटी बहुत बढ़ानी है, अमृत वेले का योग और मुरली पर बहुत ध्यान देंगे। प्योरिटी छोटी चीज नहीं है, कलयुग का प्रभाव है, गंदगी ही गंदगी है दुनिया में। किसी का पिछला जीवन भी बहुत गंदा रहा होता है। पांच स्वरूपों का अभ्यास पांच बार कर लो, सवेरे उठने से और 8 बजे तक पांच बार कर लो, सोने से पहले 1-2 बार कर लो, तो जो प्योर संस्कार हैं, देव संस्कार, वो जागृत होंगे, गंदे संस्कार नष्ट होंगे।
योग में एकाग्रता की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, और दूसरी बात, योग में व्यर्थ संकल्प को कैसे कम करें?
एक ही बात है दोनों, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये भी। व्यर्थ सुनना छोड़ना पड़ेगा, भाई हो या बहने हो, जो बहुत व्यर्थ सुनते हैं, जिनको इच्छा रहती है क्या क्या हो रहा है सब जान लें, वो एकाग्रचित नहीं हो सकते। बहुतों को इच्छा होती है, यहां भी आते हैं ना, 1-2 तो ऐसा होता ही। अभी तो आप भट्टी करने आए हैं, नहीं आए, जैसे शांतिवन में हजारों भाई बहने आते थे, उनमें से 500 तो ऐसे आएंगे जो इधर उधर घूमेंगे, क्या क्या हो रहा है देख के तो चले। आए थे अमृतपान करने, उठाने लगे कुछ और, तो एकाग्रता होगी। हम अपना लक्ष्य निश्चित करें, पर बुद्धिमान वही है, सफल व्यक्ति यही है, वही है जो लक्ष्य के इधर उधर न देखे। ठीक बात है या नहीं? आपको बिजनेस करना है, आप जो बिजनेस है उस पर फोकस करेंगे या ज्वेलरी का धंधा भी जाके देखेंगे? मैं भैंसों से बहुत सीखता हूं ये बात, थोड़ा हंस भी लें आप। सुमन बहन भी गाड़ी लेके जाती है ना, भैंस अगर रास्ता सड़क पार कर रही हैं, तो वो वही देख रही हैं जहां उन्हें जाना है। आप पों पों करो या कुछ भी करो, वो मुड़ के नहीं देखेंगी, लक्ष्य पर ध्यान। चलो भैंस की बात सुन के ना हंसना, कई माताएं भी ऐसे ही करती हैं, शांतिवन में हमें गाड़ी लेके ही जाना है, उनको उधर से उधर जाना है, तो वो देखती नहीं गाड़ी भी आ रही है क्या, उनको अपना लक्ष्य ही दिख रहा है। मैं ऐसी माताओं को अप्रिशिएट करता हूँ, हम भी सीखते हैं कि हम भी अपना लक्ष्य देखें तो माताओं से आगे निकल जाएंगे। तो एकाग्रता एक ऐसी चीज है, बुद्धि को स्वच्छ करें। ये बुद्धि हमारी पारस बुद्धि है, ईश्वरीय बुद्धि है, इसको डस्टबिन न बनाएं। टॉपिक बहुत बड़ा है ये, बहुतों ने इसको डस्टबिन बना लिया है, सोने के बर्तन में किचरा डालने लगे हैं। सोने का है, प्रभु देन है, पुरानी बुद्धि नहीं है, ईश्वरीय बुद्धि है। और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करेंगे एकाग्रता बढ़ाने के लिए, केवल आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा समय, 10-10 सेकंड, और बहुत बार कर जाओ। आप एक दिन करके देख लेना अपने घर में, जिस दिन आपकी छुट्टी हो, सोच लेना हर घंटे में मुझे 5 बार अपने आत्मिक स्वरूप को देखना है। चमकती मणि किरणें फैल रही हैं, हर घंटे में 5 बार, बाकी सब छोड़ देना उस दिन, इधर उधर देखना और शाम तक देखना, चित्त आनंद का सागर बन जाएगा। सागर कह रहा हूं, बात समान आनंद हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी। तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे।
शादियों में जो कवर देते हैं उसको किस खाते में जाता है वो?
अबे मुझे तो पता नहीं, कवर खाली देते हो पैसा डाल के, नाम कवर ही हो गया आजकल। अब देखो, आप लोग दुनिया में रहते हैं, आपको संबंध निभाने पड़ते हैं, इसको आप ज्यादा सीरियसली ना लो, क्योंकि आपके बच्चों की भी शादी होनी है और उन्हें भी कवर मिलने हैं, इसलिए निष्काम भाव से देते चलो, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं। ये तो संबंधों को निभाना ही पड़ता है संसार में।
भाई जी, मेरा शिफ्ट ड्यूटी है, सेकेंड या नाइट सेकेंड शिफ्ट होता है, नाइट शिफ्ट होता है, तो अमृत वेला कैसे?
जब भी आप उठें तभी आपका अमृत वेला। दिन में 2 बजे उठें कभी सो के, तो बाबा आपके लिए खाली रहेगा, बच्चा उठ गया आओ, सोचो नहीं। जब ड्यूटी शिफ्ट ड्यूटी है, अभी आप सोचो मैं रात के 2 बजे सो रही हूं और 4 बजे उठ के योग भी करूं, न योग होगा न नींद होगी, सिर्फ दर्द मोल ले लेंगे। इसलिए ऐसा नहीं, 2 बजे तक ड्यूटी है, 2 बजे ही 15 मिनट योग करके सो जाओ, फिर जब उठो तब अच्छा योग करना। जो आपकी जागृत का समय है उसमें अच्छा पुरुषार्थ कर लेना, और जब उठो उसका 1 घंटा सुंदर बिताना। ये नहीं भाई हम तो 9 बजे उठे हैं अब तो कोई पुरुषार्थ का समय नहीं रहा, 9 से 10 सुंदर अभ्यासों में बिताओ तो आपको कभी मिसिंग फील नहीं होगी।
घर में पति और बच्चे ज्यादातर करके मोबाइल में रहते हैं, समय का महत्व नहीं समझते हैं, उसको भी उन लोगों को भी ज्ञान में कैसे लाए, बाबा का कैसे बनाएं?
मोबाइल भी माया है ना बहुत बड़ी आजकल, मोबाइल ने बहुतों को नष्ट किया। मैं 2 विधि आपको बता रहा हूं और यहीं बस क्लास समाप्त कर देंगे बहन जी। 2 सुंदर विधि मैं इसलिए पूछा कि मैं थोड़ा ज्यादा बता दूं उन्हें 5 मिनट में, और वो ये हैं, सभी माताओं को ज्यादा करना है ये काम। सवेरे जब सब सोए हों, अब तो उठ ही जाएंगे, उन सब को अच्छे वाइब्रेशंस देंगे आप 5-7 मिनट, अगर वो अलग हैं उनके पास चले जाओ, बच्चे हैं आपके उनके पास चले जाओ और अपने स्वमान में स्थित हो जाओ, मैं इस देवी हूं, मैं इस सृष्टि पर एक महान आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं दाता हूं, और ये सब आत्माएं हैं हमारे घर में, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं। हमारे घर में सभी देव कुल की महान आत्माएं हैं, ये हमारे कुल का नाम रोशन करेंगे, ये सब बाबा के बच्चे हैं, जल्दी उनसे अपना अधिकार लेंगे। 5-7 मिनट लगा देना, देखना आपको भी मजा आएगा, आपके वाइब्रेशंस भी बहुत सुंदर हो जाएंगे, और जब वो उठेंगे ना सोकर 5-7 दिन के बाद, वो वही सोचेंगे जो आप सोच रहे थे। ये अंतर मन की सबकॉन्शियस माइंड की सूक्ष्म गति है, क्लियर है? आप उन्हें संकल्प दे रहे हैं, भगवान आया है, तुम भी उनके पास आ जाओ, तुम भी उनसे ज्ञान ले लो। तो वो जब उठेंगे यही सोचेंगे, ये कहती तो ठीक है भगवान आया, चल के तो देखो कभी आ ही गया हो, विचार चेंज हो जाएंगे। लेकिन करना ये है रोज सेम टाइम, कम से कम 7 दिन तक सेम टाइम, समझ गए? रोज वही समय, समय बदलना नहीं है। दूसरी चीज, ये बहुत सूक्ष्म चीज है इसलिए मैं क्लास में बता रहा हूं और आप सभी समझ जाएंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में है। किसी व्यक्ति की शराब छुड़ानी है, मोबाइल का व्यसन छुड़ाना है, क्रोध छुड़ाना है, कोई गंदी आदत पड़ गई है वो छुड़ानी है, किसी को पवित्र बनाना है या ज्ञान में लाना है, सब चीजों के लिए एक विधि, वो है सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग, अंतर मन की शक्ति का प्रयोग। उसमें भी यही करेंगे, इसमें उनके पास जाने की आपको जरूरत नहीं, चाहे वो अमेरिका लंदन कहीं भी हैं, उन्हें आत्मा देखेंगे, चमकती ज्योति, 5 मिनट वाइब्रेशंस देंगे जिसे हम सकाश कहते हैं, मुझात्मा से पवित्र किरणें, शक्तियों की किरणें उन्हें जा रही हैं। एक एक पर किया जा सकता है, सामूहिक भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हम बहुत पावरफुल होने चाहिए। एक पे कर लें आप, वाइब्रेशंस दें 5 मिनट, और फिर उन्हें आत्मा देखते हुए उनसे बात करो, मुख से नहीं, मन से, माइंड टू माइंड उनसे बात करेंगे, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम भी कभी देव कुल में थे, तुम बहुत पवित्र थे, तुम्हारे विचार बहुत महान थे, तुम बहुत चरित्रवान थे, अब ये चीजें छोड़ दो। तो आप बिल्कुल सत्य रूप से देखेंगे, 7 दिन करने पर उसको वही विचार आएंगे, मेरे में ये तो बुराई थी नहीं, मैं छोड़ दूं इसे। और आप जो सकास देंगे रोज, उससे छोड़ने का बल मिल जाएगा। किसी को क्रोध आता है, संकल्प दे दो, तुम तो देव कुल की आत्मा हो, पवित्र हो, तुम तो बहुत शांत हो, क्रोध से मुक्त हो, तुम्हें तो सबको प्यार देना है, बच्चे आपसे प्यार चाहते हैं, अब ये क्रोध छोड़कर सबको प्यार बांटो, चेंज हो जाएगा। समझ गया ना, भिन्न भिन्न तरह के संकल्प देना, इससे इस प्रयोग से आप किसी को ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान में ला सकते हैं। आज था ना वरदान में, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति द्वारा आत्माओं को आह्वान कर सकते हैं, उन्हें संदेश दे सकते हैं। तो ये सवेरे करना है, जब हमारा मन शांत हो और वो सोए हो, तब उनका अंतर्मन बहुत एक्टिव होता है। इस तरह आप अपने परिवारों को समस्याओं से मुक्त, मोबाइल के व्यसन से मुक्त, शराब से मुक्त, क्रोध से मुक्त, प्यार और खुशी से भरपूर परिवार बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।